93 सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। योग के प्रयोग की विधि सिखाने वाले ज्ञान दाता बाप अपने ज्ञानी तो आत्मा बच्चों प्रति बोले। आज ज्ञान दाता वरदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युग तक कहां तक बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं और ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं और सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी है तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी है ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और आंधी आ रहा साथ साथ नहीं होता तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का टेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। तो क्या सुना? ज्ञान दाता प्रदाता अपने ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बच्चों को देते। तो बाबा ज्ञान क्या है और योग क्या है ये बताने जा रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मा किसे कहेंगे और योगी तो आत्मा किसे कहेंगे? ज्ञानी तो आत्मा अर्थात केवल ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने, ये नहीं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का भी क्या अर्थ बताया आगे कि हर संकल्प और बोल और कर्म समर्थ। केवल 7 दिन का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, सुना और सुनाया, इसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी अर्थात संकल्प बोल कर्म समर्थ, ज्ञानी अर्थात व्यर्थ समाप्त, ज्ञानी अर्थात जहाँ संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। तो ये ज्ञानी आत्मा की परिभाषा है कि जिसमें संकल्प भी बोल भी और कर्म भी समर्थ हो, व्यर्थ से मुक्त हो। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो बाकी सब समर्थ हो जाएगा। संकल्प को समर्थ बनाना, संकल्प बीज है। वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ, हर संकल्प समर्थ और हर समय हर सेकंड भी समर्थ। मतलब वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो और संकल्प वेस्ट ना हो, ये ज्ञानी आत्मा की निशानी है। अगर ऐसा है तो ज्ञानी कहेंगे। केवल सुनने सुनाने वाले नहीं, केवल ज्ञान बोलने वाले नहीं, केवल भाषण देने वाले नहीं, परंतु स्वरूप बनना, संकल्प को शक्तिशाली बनाना। संकल्प यदि शक्तिशाली है तो बोल कर्म संबंध संपर्क सभी समर्थ होगा। तो ये था ज्ञानी तो आत्मा की निशान, ये थी। अभी आगे है योगी तो आत्मा। योगी किसको कहेंगे? योग लगाने वाले, योग करने वाले और कराने वाले, बस योगी जीवन वाले और जो सदा योगी है, स्वतः नेचुरल स्वाभाविक निरंतर सहज। और ज्ञानी तो सुन लिया ना, जो स्वरूप है वो ज्ञानी, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। गीता में लिखा हुआ है जो ज्ञानी है वो मुझे अति प्रिय है। और योगी वो मैं ही हूँ, स्वयं मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप है वो। ज्ञानी मुझे सर्वाधिक सर्वाधिक प्रिय है इस संसार में, ज्ञानी से अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। परंतु जो योगी है वो तो स्वयं मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप है, वो चलता फिरता। योगी कौन है? तो ज्ञानी अर्थात स्वरूप, योगी अर्थात कंबाइंड, योगी अर्थात युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो, समान हो। वो योग है, कर्म योग है, वो तो है योग। योग योग अर्थात आत्मा समझ, वो आपको याद कर। अभी आपने क्या कहा? कर्म है, कर्म से कौशल। योगी का हर कर्म कुशल होगा, दक्षता होगी हर कर्म, स्किल्ड। हाँ हाँ परफेक्ट। प्रयोगी, योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योगयुक्त योगयुक्त हो, योगयुक्त युक्तियुक्त हो। इसमें नंबर और है, क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक, विधि भी एक, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार है। ऐसे कोई है जो कहे कि योग करना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। योगी अर्थात प्रयोगी, प्रयोग करना अर्थात उसके दो यूज, दो का दो दो अर्थ। एक है यूज करना, यूटिलाइज करना, एक है एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करके देखना, रिसर्च, प्रयोग करना। ये किया उसका क्या होता है, ये चीज ली उसका प्रयोग किया, तो एक है एक्सपेरिमेंट, एक है उसका यूज। तो इस तरह से दो अर्थ हो सकते हैं। यहाँ बाबा सेकेंड अर्थ जो है उसके लिए कह रहे हैं, अर्थात एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट। तो बाबा कहते हैं अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। योग अर्थात ही साइलेंस, तो उसका जो प्रयोग है मतलब एक्सपेरिमेंट करना, योग के एक्सपेरिमेंट, योग के प्रयोग। जैसे महात्मा गांधी की जो जीवन कथा है उसका नाम क्या है? माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मेरे जीवन में सत्य के प्रयोग। तो उन्होंने जीवन भर क्या किया? सत्य लिया और उसके ऊपर प्रयोग किया। वो कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो एक लेबोरेटरी है, जिस पर सारे जीवन भर मैंने सत्य पर प्रयोग किए, कि सत्य के मार्ग पर चलने से क्या होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंट किया ट्रुथ के ऊपर। तो यहाँ बाबा हमको किस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहे? योग पर। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती है। सबसे पहले अपने आप से यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहां तक प्रयोगी बने हो। अभी बाबा कहां कहां प्रयोग करना योग का वो बता रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग किसके ऊपर है? संस्कार के ऊपर प्रयोग। लंबे समय से कोई संस्कार हम दुनिया वालों को सिखा रहे हैं, योग से क्या क्या फायदे? अब अपने आप को सिखाओ, अपने आप की चेकिंग कि ये संस्कार है तब से चालू है, 10 साल से चालू है, 5 साल से चालू है, इस पर प्रयोग करना है अभी योग का। फिर उस संस्कार का क्या होता है वो देखना, प्रयोग करके उसके ऊपर देखना वो कहां तक परिवर्तन होता है। कोई भी संस्कार हो सकता है फिर, क्योंकि आप अपने श्रेष्ठ संस्कार, आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी है। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहां धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था या वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहां तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तन नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तन कैसे होगा? तो सबसे पहला प्रयोग किस पे करना है? संस्कार पर प्रयोग करना है। प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजय। दूसरी निशानी की दूसरा किस पर प्रयोग करना है? हाँ, योग क्या बस, तो उसको क्या कहेंगे? बाबा ने उसको कहा प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थिति पर योग के प्रयोग द्वारा विजय। तो दूसरा प्रयोग है प्रकृति पर, प्रकृति में परिस्थिति आ गई। पहला प्रयोग है संस्कारों के ऊपर, दूसरा प्रयोग है प्रकृति के ऊपर, और तीसरा विकारों के ऊपर। प्रकृति अर्थात की परिस्थिति, प्रकृति में परिस्थिति आ गया, और तीसरा प्रयोग विकारों पर। ये तीन प्रयोग है। संस्कार, ऐसे भी कुछ संस्कार है जिसमें विकार नहीं कह सकते। विकार अर्थात मोटे रूप काम, काम विकार को किसी को अगर जीतना है तो योग के प्रयोग से काम की उत्तेजना को कैसे शांत कर दे, वो एक प्रयोग है। बाबा कह रहे प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थिति पर योग के प्रयोग। अभी समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है पुरुषोत्तम आत्मा है, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सालवेशन के रूप में प्रभावित करती है। और सालवेशन तो प्रकृति में एक तो परिस्थिति, साधन और सालवेशन, ये तीन बातें प्रकृति में। साधन व सालवेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सालवेशन कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी, इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी पहला, दूसरा प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं, और तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। अभी विकारों के लिए क्या है? योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये पांच विकार कैसे है? योगी के लिए पांच विकार कैसे है? जैसे छत्र छाया, शैया, जो दूसरों के लिए जहरीले सांप है। संसार की आत्माएं द्वापर युग से प्रयत्न कर रही है काम से छूटने का, ये छूट पाए क्या? बहुत मुश्किल, असंभव कह दिया है, असंभव। सागर के पानी को पी जाना आसान है पर काम से छूटना मुश्किल है, ऐसा कहते हैं। जो जंगली हाथी है उसको वश करना संभव है परंतु काम विकार को वश करना असंभव है। पहाड़ को हिला देना संभव है परंतु काम विकार से मुक्त होना असंभव है। जो नाग होता है उसको वश करना संभव है परंतु काम से मुक्त होना असंभव है। सारे प्रयास किए लोगों ने, ग्रंथ लिखे, शास्त्र लिखे, फिर भी असफल। तो जो संसार के लिए विषारी जहरीले सांप है, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप क्या है? शैया भी है या और एक चीज कहीं गले की माला बन जाते हैं। सांप के तीन उदाहरण है ना हमारे लिए, एक तो शंकर, दूसरा कृष्ण का, और तीसरा विष्णु का। शंकर के गले में सांप अर्थात विकारों को अधीन कर दिया। श्री कृष्ण कहाँ पर है? डांस करते हुए, नृत्य करते हुए, तो जैसे पांचों ही विकारों को अधीन कर दिया। और विष्णु शेष शैया पर, शांत हो गए। तो ये तीनों उदाहरण यहाँ बाबा कह रहे हैं, ये सब गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते और बताते रहते हैं। और दूसरा यादगार है, ये सब आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। शरीर कालिया कालिया नाथ वो छत्र छाया। तो जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हो, क्या स्थिति होती है, खुशी में नाचते रहते हो ना। तो ये तीन उदाहरण है। तो हम शंकर भी कौन है, हम तपस्वी स्वरूप हमारा है शंकर, जिसमें हमने विकारों को अधीन कर लिया है। दूसरा स्वरूप है हमारा कृष्ण का, जिसमें अतीन्द्रिय सुख हमको प्राप्त है और सारे ही विकारों को हमने अधीन कर लिया है। तीसरा स्वरूप है विष्णु का, कि जिसमें एक तरफ तो समुद्र की लहरें हैं, तूफान आ रहे हैं, परंतु वो निश्चिंत है, सोया हुआ है, योग में जैसे अनंत आसन में लेटा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। तो ये तीनों ही किसके यादगार है, हमारे यादगार है। तो यह स्टेज, यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है, स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो केवल योगी बनना नहीं है, अभी क्या बनना है, प्रयोगी। तो प्रयोग किसके ऊपर करना है, सबसे पहला प्रयोग करना है संस्कार के ऊपर, दूसरा प्रयोग करना है प्रकृति के ऊपर, प्रकृति में भी परिस्थिति साधन सल्वेशन जो भी साधन प्राप्त है उनके ऊपर, तीसरा प्रयोग विकारों के ऊपर। अभी सबसे पहला जो प्रयोग है वो कैसे करेंगे, संस्कार के ऊपर प्रयोग करना है। किसी का संस्कार, ये सब योग के लिए है, किसी का कोई एक पर्टिकुलर संस्कार है, हर आत्मा का कोई ना कोई एक ही संस्कार होता है जो बहुत लंबे समय से चालू है, जिसके लिए उसने बहुत कुछ प्रयत्न किए हैं, परंतु सारा योग और सारा ज्ञान और सारी तपस्या करने के बाद भी वो अभी भी बीच बीच में आता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है या दब जाता है कुछ मास के लिए, फिर वापस आता है कुछ दिन के लिए और फिर वापस आता है। उसकी क्या कार्य प्रणाली है उसको समझना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करना अर्थात जैसे वैज्ञानिक होता है, वो देखता है, उसको स्टडी करता है, तो अपने ही संस्कारों की स्टडी करना कि ये संस्कार इसके ट्रिगर फैक्टर कौन कौन से, क्या क्या हुआ तो ये वापस आता है। जैसे एग्जाम्पल रोने का संस्कार, किसी को रोने की आदत होती है ना, कब कब रोना, देखा कि प्रतिज्ञा कर लेना, आज मुरली चली, जो रोते हैं वो विधवा है, तो हमने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज से रोना बंद। जिस दिन प्रतिज्ञा की उसी दिन अब तक नहीं रोया था या रोई थी, जिस दिन प्रतिज्ञा की बस उसी दिन आंखों से आंसू आए, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, हम प्रतिज्ञा तो करते हैं पर बिना सोचे समझे, स्टडी करना है, प्रतिज्ञा करने की जल्दी नहीं करनी है, पहले कुछ समय देना है अपने आप को, उस संस्कार को समझना है पहले, तो वो कब आता है, कैसे निकलता है, उसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या है, क्या क्या बातें हो जाती है, तो ये होता है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी के बोल खराब, व्यवहार खराब, बोल और व्यवहार ये बहुत प्रभावित करता है आत्मा, दूसरों के बोल, दूसरों का व्यवहार, गलत बोल और गलत व्यवहार अगर किसी ने किया तो आंसू आते हैं, खुशी के आंसू की बात नहीं चल रही, दुख के आंसू की बात चल रही है, खुशी के आंसू आते हैं तो आने दो, उसके ऊपर प्रयोग नहीं करो, उसके ऊपर करना है तो योग ठीक है और शक्तिशाली हो जाएगा। यहाँ बात चल रही है ऐसे संस्कारों की जो कि बाधा है, ऐसे संस्कार हर आत्मा लिए हुए है जो कि उसको योग में बैठते ही उसको रोकते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, अध्यात्म की जो प्रगति है वो होने नहीं देते। अपने संस्कारों को पकड़ना कि ये वो बात है, इसका ये ट्रिगर फैक्टर से, ये अगर हमको दो या तीन ट्रिगर भी मिल गए कि ये अगर हो गया तो ऐसा होता है, तो भी हम उस संस्कार, तो इस संस्कार पर योग का प्रयोग करना है, योग में उस संस्कार को इमर्ज करके अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि यहां से बहुत, जैसे कोई लाइट निकल रही है, आग निकल रही है, पहले तो ऐसे सोचना कि आत्मा से वो संस्कार निकल कर बाहर आया, फिर यहाँ से कुछ लाइट निकल रही है और उस संस्कार को भस्म कर दिया। जैसे वो देवियों का दिखाते हैं ना सीरियल में, कोई असुर है इधर देवी है, इधर से लाइट उधर से लाइट, फिर दोनों का युद्ध हुआ, फिर वो अंत में भस्म हो जाता है। तो हमारा भी एक संस्कार है, मिटोने का संस्कार राक्षस का रूप धारण करके सामने है। तो हमने यहाँ से लाइट की किरणें दी, फिर आग, फिर कुछ कुछ ऐसे किया यहाँ से, तो वो भस्म हो गया। फिर उसको देखो भस्म होते हुए, राख होते हुए, समाप्त होते हुए। हम कुछ समय दे रहे हैं ना, ये योग के प्रयोग है संस्कारों के ऊपर। तो योग के प्रयोग करना, जैसे हमने जो योग के प्रयोग किए किस लिए करते हैं, लोग योग के प्रयोग स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। कितने ज्ञानामृत में अनुभव, अभी भी अभी का जो ज्ञानामृत इस मास का मार्च का, उसमें भी एक भाई का अनुभव आया ना, उसको एक बीमारी थी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, उसने लिखा है, बहुत सुंदर अनुभव है कि जिसमें पैर बेचैन रहते हैं, एक मिनट भी एक जगह नहीं टिक सकते, बेचैन ही रहती, रात भर पेशेंट व्यक्ति ऐसे ऐसे तड़पते रहता है, उसको घूमते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। वो लिखता है अपने अनुभव में, रात को 12 बजे तक मैं जागता था, 12 बजे फिर भी सोने का प्रयत्न करता था, नींद नहीं आती थी तो सड़कों पर भटकते रहता था, फिर जब मुरली क्लास होता था सुबह तब नींद आती थी एक घंटा, तो रात मेरी ऐसी ही जाती थी, कितने मास तक सब कुछ कर लिया पर नहीं होता था। तो पहली बार बाबा से मिलने आया और फिर वहां उसने वो योग का प्रयोग किया कि बाबा सामने अव्यक्त बाधा था और उसको मैं ये बीमारी दे रहा हूं। और उसके उसी रात उसे ऐसी नींद आई, वो ये भी लिखता है कि मैं जब ट्रेन से आया तो रात भर एक भाई मेरे पैरों की मालिश कर रहा था, और फिर वो लिखता है कि ये रात में मुझे ऐसी नींद आई कि मेरे खुर्राटे इतने थे कि लोग सो नहीं पाए कमरे के, पहली बार मैं सोया इतने दिनों के बाद। तो उसने बीमारी पर प्रयोग किया, ये भी एक प्रयोग ही है। हमारी वैसे ही यज्ञ में जैविक खेती, वो भी एक प्रयोग ही है ना, योग के प्रयोग का ही भाग है वो, तो वो भी एक योग का प्रयोग है। जैसे संसार के लोग पहले हठयोग को मानते नहीं थे, वैज्ञानिक हठयोग को नहीं मानते थे पहले, पर अभी मानने लगे हैं उसको, प्राणायाम आसन, उसके उससे स्वास्थ्य के क्या क्या लाभ है, कैसी हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, कितने सारे रोग उससे मिटते हैं, बहुत सारे प्रयोग उस पर किए गए। एक समय था कि इस विज्ञान इसे नहीं मानता था, उसी तरह राजयोग को भी पहले का कोई मानता था, पर इस राजयोग से क्या कुछ हो जाता है, हमको तो बहुत कम पता है कि योग से क्या क्या होता है। बाबा तो योग से एक नए विश्व की स्थापना की बात कर रहे हैं, वो तो संसार उसको सोच भी नहीं सकता है, वो योग का प्रयोग ऐसा है। तो सबसे पहला प्रयोग करना है संस्कारों के ऊपर, दूसरा करना है परिस्थितियों के ऊपर, परिस्थिति साधन सल्वेशन, विकराल परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति की जिसके लिए हमने कुछ सोचा नहीं था और अचानक से आ गई, अभी इसमें योग का प्रयोग किस तरह किया जाए, तो वो अमृत वेले किया जा सकता है। अचानक कोई परिस्थिति आ गई, अचानक किसी ने हम पर कुछ दोषारोपण कर दिया, अचानक निंदा, अचानक ग्लानि, अचानक अपमान, इस तरह की जो बातें जो आत्मा को हिला देती है, अचानक कमेंट्स का सामना करना पड़ा, कमेंट्स करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हिला देती है आत्मा को, कमेंट्स, कमेंट्स करते हैं ना, विरोध, आलोचना, निंदा, ये ऐसी बातें हैं, अपमान, अपमान भी सबके सामने, अलग से नहीं सबके सामने, वो आत्मा को हिला देता है। निंदा, कलंक, अपवित्रता के ऊपर कलंक लगाया जाए किसी पर तो आत्मा हिलती है वहां पर। बाकी कुछ कहा तो ठीक है, चोरी का इल्जाम लगाया तो कम, इतना नहीं, पर यदि अपवित्रता के लिए, पवित्रता अपवित्रता इन बातों के लिए अगर कोई कुछ कहे, कमेंट्स करे, निंदा करे या कुछ फैलाए वातावरण में हमारे विरोध में, हमारे सामने अच्छे से बात करते पर हमारे पीछे ये सब करते, ये जब बातें होती है तब आत्मा हिलती है। क्या ब्राह्मण जीवन में आत्मा इन सब बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, कोई कमेंट्स करने लगे, कोई हमारे पीछे ही पड़ जाए, षड्यंत्र करने लगे या कुछ और करने लगे, उसमें वो वो सब भी आता है, जादू टोना हो सकता है। हम रूम कमरे से उठे और देखा एक नींबू और उसमें कुछ रखा हुआ है, तो क्या होगा? खा लो, शरबत बना के अच्छा फ्री में मिल गया। क्यों सुबह सुबह कि सोचते रहेंगे पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे विरुद्ध। तो ये सारी बातें जो आत्मा को हिलाती है, इसे परिस्थिति कहा जाता है। ये पर है, प्रकृति से उत्पन्न है। दूसरा है साधन। हमारी जो साधना है, हमारा जो योग है, वो साधनों पर आधारित ना हो। परसों का स्लोगन था ना, हमारी जो साधना है, हम साधक है, साधक साधना साधन, साधक साधना और साधन, साधक साधना करे परंतु साधनों के अधीन ना हो। दो तीन दिन पहले मुरली में था ना, ना तो तुमको हाथ है जो तुम जोड़ते हो, ना ही मुझे पैर है। भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह यहां नहीं होना चाहिए। बाबा ने जो ट्रांसलेट है इसके लिए भी कहा है, कभी जरूरत नहीं है तुमको रखने की। कभी ने कभी ये भी कहा है कि क्या कभी बिंदु को सामने रख के बाण को याद किया जाता है क्या? ना तो ट्रांसलेट, ना तो कोई फोटो, ना तो म्यूजिक, ना तो लाइट, ना तो ये जो फर्श है इस पे बैठ के भी अच्छा योग लगना चाहिए। हमें जरूरी नहीं कि ये रहेगा, गद्दी रहेगी या चेयर रहेगी, ये सब साधन है तो प्रयोग करो, यूज करो। परंतु नहीं है, हमारी साधना प्रभावित हो। क्या कहा? वो आ जाएंगे, वो अलग बात है, परंतु नहीं है तो प्रभावित नहीं। ये है तो योग होगा, वो है तो योग होगा, ऐसे कुछ नहीं। कहीं पर भी हम हो, ये तो चलता फिरता योग है ना, केवल बैठे तो ही योग, ऐसे नहीं। जहां बाबा ने होमवर्क क्या दिया है, कामकाज करते बाप की बातों को याद करो, बाप को याद करो। तो ये हर स्थिति में किसी भी साधना साधन पर हम अवलंबित न हो, निर्भर न हो। है तो प्रयोग करो, परंतु नहीं है तो भी अप्रभावित। ये हो गया। फिर सल्वेशन, सल्वेशन सहूलियत, मतलब क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटीज, सुविधाएं। ये है तो योग, वो नहीं है तो योग, ऐसा नहीं। तीसरा प्रयोग करना है विकारों के ऊपर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। सबसे पहला है काम। क्रोध आ रहा है अर्थात कहीं ना कहीं काम विद्यमान है। मूल विकार ही काम है। भगवान इस संसार में आया ही है काम से मुक्त कराने। काम को अगर पकड़ लिया जाए तो बाकी सारे जो अपने आप ही वश में हो जाएंगे। तो सारा जो प्रयोग करना है वो योग पर, ये काम पर, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। क्योंकि शरीर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे जैसे एक व्यक्ति युवा होता है, 14 साल और 16 साल ये जो एज है, यहाँ पर ही शरीर में ऐसे हार्मोन्स निर्माण होते हैं कि जिससे स्वतः ही स्त्री और पुरुष का आकर्षण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर व्यक्ति समझ में ही नहीं आता है उसको क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है यही समझ में नहीं आता है। परंतु प्रकृति के लिए ये आवश्यक था द्वापर से अब तक। अगर वो ब्रह्मचारी रह जाते देवता तो ये प्रकृति आगे नहीं बढ़ती। इसके लिए जो सतयुग त्रेता में नहीं था, जो ग्रंथि है अंदर उनका जो सिक्रीशन जिसको कहते हैं स्त्रवित जो होती थी, उसका जो स्खलन होता था द्रव्यों का, वो नहीं होता था वहां पर सतयुग त्रेता में। देवता ऊर्ध्व रहता योगी थे, वीर्यवान थे वो, वहां मासिक धर्म इस तरह की कोई बातें नहीं थी। इसके लिए वहां पर योगज सृष्टि थी, अमैथुनी सृष्टि थी वो, तो यहां पर वो नहीं होता था। द्वापर से ये चालू हुआ, वहां पर शरीर में भी कुछ बदलाव होने लगा और उस वजह से ये जो सिक्रीशन से ये बाहर की तरफ जाने लगा। और ऐसे केमिकल सिक्रीशन होते हैं कि व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। सबसे तीव्र वेग जो है वो काम का वेग है। भोजन का वेग इतना तीव्र नहीं है, भोजन को फिर भी व्यक्ति रोक सकता है, परंतु काम विकार का वेग ऐसा है, सबसे प्रबल इच्छा वही है, उससे अधिक प्रबल इच्छा कोई नहीं है। ये जो जिह्वा है, जिह्वा का जो आकर्षण है अन्न के लिए, इससे भी अधिक तीव्र आकर्षण है जननेंद्रियों का, जो ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसका आकर्षण इतना तीव्र है, इतना तीव्र है कि व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है, मजबूर हो जाता है। परंतु उससे प्राप्त किया क्षणिक सुख, ऐसा नहीं कि उसमें सुख नहीं है, सुख है, इसके लिए तो सारा संसार उसके पीछे पागल है। और वो सुख सबसे बड़ा सुख है संसार का, भगवान लोग कहते हैं ये तो जैसे पूंजी है, पूंजी में आता है, वो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि उसने क्षण के लिए अशरीरपन का अनुभव है, उसमें भी एक क्षण के लिए, जो कि योग में लंबे समय तक रह सकता है, परंतु वो छोटा सुख है, वो व्यक्ति तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसको कोई बड़ा लड्डू नहीं मिल जाता। छोटे बच्चों को दो लड्डू दिए तो वो बड़ा लेगा, अगर छोटा तब तक नहीं छोड़ेगा वो जब तक उसको बड़ा ना दिया जाए। संसार के सुख, इंद्रिय सुख व्यक्ति तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको अतिद्रिय सुख का अनुभव न होता। तो उसके लिए योग के प्रयोग से ही काम विकार या वासना को वश में किया जा सकता है। केवल ज्ञानी बनने से काम विकार वश में नहीं होता है। ज्ञान से बहुत सारी बातें समझ में आती है, परंतु वो अधीन हो जाए उसके लिए योग ही चाहिए। योग की अशरीरी अवस्था ही कर्मेंद्रियों को शीतल करेगी। उसके सिवा वो जो उत्तेजना है, वो जो उन्माद है, वो जो आकर्षण है, वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी करे, कुछ भी करे, क्योंकि शरीर में बहुत सारी चीजें हो रही है। अभी योग के प्रयोग से अशरीरीपन की अवस्था से आत्मा जब प्यूरिटी के वाइब्रेशंस ब्रेन में फैलते हैं, तो वहां पर बहुत सारे ग्रंथि है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, वो पवित्र होते हैं। वो शांत होने के बाद ही जो उत्तेजना है देह की अंदर की, वो शांत हो सकती है, नहीं तो ये आकर्षण हमेशा बना रहे, आकर्षण रहेगा, इसको कोई जीत नहीं सका, ना ही जीत सकेगा। जब तक आत्मिक दृष्टि नहीं होती है, जब तक आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं हो जाते हम, मैं आत्मा हूं, देह स्त्री ना दिखे ना पुरुष दिखे, जैसे दिखा है महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं योग में, उधर से कुछ पुरुष एक स्त्री के पीछे जा रहे हैं, उसको पकड़ते हुए, वो स्त्री वहां से चले गए, वो लोग उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि क्या तुमने किसी स्त्री को जाते हुए देखा यहां से? उसने कहा कोई गया तो, परंतु वो स्त्री था या पुरुष था वो मुझे पता नहीं, वो कौन था मुझे पता नहीं। जितना जितना हम ज्ञान में अगर बहुत अच्छे हैं, परंतु अगर योग नहीं कर रहे तो देह का आकर्षण रहेगा। जैसे जैसे योग में स्थिति ऊपर ऊपर होती जाती है, देह का आकर्षण स्वतः ही कम होते जाते हैं, फिर वो देह केवल एक पुतला, वो स्त्री या पुरुष नहीं दिखता है, वो केवल जैसे हड्डी मांस का एक था। देह को देखना है, परंतु उसके वास्तविक स्वरूप को देखना है, वो क्या है, वस्ति पंजर, उसमें सब रोग है, उसमें सब विकार है, यह देह ही है जो कि नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, फिर वो सुंदर असुंदर नहीं दिखता है, फिर वो स्त्री और पुरुष नहीं रहता है, वो केवल आत्मा रह जाती है, केवल सभी आत्माएं हैं। फिर उस व्यक्ति को, उस स्त्री को पुरुष से दूर जाने की जरूरत नहीं है, पुरुष को स्त्री से दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं हैं। एक है भागने का मार्ग दूर जाने का, जो सन्यासियों ने लिया कि सब कुछ करके देखा नहीं हुआ, हिमालय की चोटी में चलो वहां करते योग, दमन का मार्ग है, जो कि दबा दिया वासना को, जितना दबाया उतनी वो और शक्तिशाली हुई, जितना दबाया। अमेरिका में एक वो ग्रुप है सन्यासियों का, जो कि अपने शरीर को कोड़ों से मारते हैं, फ्लैगिस्ट कहते हैं उन्हें, जैसे ही काम वासना उत्पन्न हुई कि उससे अपने आप को मारो, परंतु उसका उल्टा प्रभाव हुआ, फिर एक समय ऐसा आया कि जितना वो मारने लगे, थोड़े समय के बाद वो वासना और ज्यादा होने लगी, करने का कुछ और कारण से होने कुछ और लगा बाद। ये सब दमन के मार्ग है, इससे कभी भी वासना को जीता नहीं जा सकता। दूसरा मार्ग है भोग विलास, वासना उत्पन्न हुई उसको भोगो, इससे व्यक्ति और ही कमजोर होते 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 उसके संपूर्ण अधीन हो गया। दूसरा मार्ग जो था वो था दमन का, उससे वो पागल हो गया। संसार में अगर जितने पागल खाने में जाओ और वहां के पागलों का अगर अध्ययन किया जाए, तो 90% पागल सप्रेशन की वजह से हुए, इच्छाओं का सप्रेशन, वासनाओं का सप्रेशन, दमन। बाबा ने जो मार्ग बताया वो मार्ग कौन सा है? एक मार्ग है दमन का, दूसरा मार्ग है भोग का। बाबा ने मार्ग जो बताया वो है रूपांतरण का, दिव्यीकरण इसे कहा जाता है। उदात्तीकरण इसे कहा जाता है, दिव्यीकरण, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, सब्लिमेशन, सप्रेशन नहीं सब्लिमेशन, उसका रूपांतरण कर दो, अर्थात उसका स्वरूप ही बदल दो। इंग्लिश का बहुत सुंदर शब्द है शब्द सब्लिमेशन, इसे कहा जाता है ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ। क्या कहा जाता है? ज्ञानमयी और प्रेममयी समझ दी, उससे इस वासना को जीता जा सकता है, उससे मुक्त हुआ जा सकता है। नहीं तो कोई मार्ग ही नहीं है उससे, उसका दमन करो तो पागलपन विक्षिप्तता, उसको दबाओ तो और कमजोरी और उसकी अधीनता। बीच का जो मध्यम मार्ग है, मध्यम मार्ग वो है रूपांतरण का मार्ग, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन सब्लिमेशन का मार्ग। तो इस पर हमको योग के प्रयोग करने हैं कि जो जो वासनाएं हैं उनको कैसे डिवाइन बनाया जाए, सब्लिमेट किया जाए, पवित्रीकरण कैसे किया जाए, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाए उनका, तो ही वो वश में आ सकते हैं। नहीं तो इनको वश में करना संभव है। अगर किसी को लगे कोई ज्ञान में आ गया, रोज सुना मुरली में काम महाशत्रु आदि मध्यंत दुख देता है, इतना सुनना पर्याप्त नहीं है, उसके ऊपर काम करना होता है, उसके पहले तो समझ बढ़ानी पड़ती है। जैसे हमने बाहर का खाना छोड़ दिया, वापस किसी को संकल्प नहीं आता है कि बाहर में जिलेबी बहुत अच्छी बनी आज तो खानी चाहिए, फिर योग में कहते रहे नहीं नहीं बाबा ने मना किया है, ऐसे कोई सोचता है? आज तो बहुत अच्छा उधर कचौरी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ा देख के जाऊं, कम से कम खाना नहीं है, ऐसे इस तरह का संघर्ष में कोई रहता है? टोटल रिजेक्ट कर दिया आते ही कैंसर, और बाकी विकारों का फिर क्या, उनको रिजेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी संपूर्ण समझ प्राप्त हो गई। तो संपूर्ण समझ ही मुक्ति है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन इज फ्रीडम। तो वैसा ही काम को हमने समझा कहां है, ये आता कहां से है, क्यों आता है, कैसे आता है, कहां है इसका निवास स्थान, क्यों ये सब होता है, क्यों अधीन हो जाती है आत्मा संसार में। आज अगर देखो तो सबसे ज्यादा विकर्म किसके वजह से हो रहे हैं, काम के वजह से हो रहे, क्यों, सोचने की बात है, क्यों हो रहे, ऐसा क्या है इसमें, ऐसी क्या प्राप्ति होती है उसको कि वो उसके इतने अधीन हो जाता है कि बाद में सारी उम्र भर पश्चाताप करता है, परंतु उस क्षण, वो जो सेकंड, वो जो दम, उस समय वो अपने आप को रोक नहीं सकता। ऐसा कुछ तो होगा उसमें कि जो सारा संसार उसके पीछे पागल है, और भगवान आया ही उसके लिए, भगवान क्रोधियों को क्रोध से मुक्त कराने नहीं आया है, लोभियों को लोभ से मुक्त कराना, वो सब उसके सेकेंडरी फंक्शन है। वो आया है पतितों को पावन बनाने, पतित का परिभाषा उसकी है काम से मुक्ति, वो इसी एक कार्य के लिए आया है, क्योंकि ये एक ही बात है जिसने आत्मा को नीचे गिराया। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा क्या है, यहाँ संतानोत्पत्ति कैसी है और वहां संतानोत्पत्ति कैसी है, वो योगज सृष्टि है, जो मैथुनी अमैथुनी सृष्टि है, ये मैथुनी सृष्टि, बस ये की अंतर है। ये काम विकार यहाँ नहीं है, काम विकार यहाँ है, सारा खेल ही काम का है और कोई दूसरा खेल ही नहीं है। तो बाबा हमको स्मृति दिलाता है, उसकी पहली बात है कि तुम देवता थे, ये उसने याद दिलाई कि वहां पर काम विकार था ही नहीं, संतानोत्पत्ति प्रजोत्पत्ति का जो प्रजनन का जो मार्ग था वो योग का था, ये तो अभी है, जो तुमको पता ही नहीं है कि ऐसा भी था, संसार को तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी मार्ग था। अच्छा फिर भी ठीक था, वो संतानोत्पत्ति के लिए काम विकार है, फिर भी ठीक है, परंतु आज क्या संतानोत्पत्ति के लिए काम विकार है? नहीं, वो शारीरिक भोग और विलास के लिए है, उससे प्राप्त क्षणिक सुख के लिए है, और वो जो सुख आत्मा एक बार टेस्ट कर लेती है फिर भूल नहीं पाती है उसको। द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, ऐसे कहा जाता है, एक बार उसको टेस्ट कर लिया किसी ने तो वही उसकी स्मृति पटल में ऐसा छप जाता है, क्योंकि जन्म जन्म भी किया है और इस जन्म अगर किया तो वो संस्कार बन जाता है। जैसे खाने का संस्कार बनता है, किसी को मीठा पसंद है, एक बार खाया, दो बार खाया, वो फिर भी बहुत कमजोर है खाने पीने का, घूमने फिरने का, परंतु काम का संस्कार ऐसा है कि वो आत्मा को गहराई में ऐसा छप जाता है कि सारी उम्र भर फिर आत्मा उसी को चाहना चाहती है। योग लगता नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता यह आने के बाद भी, और आत्मा की प्यास सुख की है, इसको भूलो मत, आत्मा को सुख चाहिए, अगर उसको योग में नहीं मिल रहा है, ज्ञान में नहीं मिल रहा है, यहाँ आने के बाद मुरली में सुख नहीं मिल रहा है, तो उसका ध्यान सीधा ही खींच कर उधर ही जाएगा काम पर, और कोई मार्ग ही नहीं। उसको फिर वही चाहिए, उसको कैसे भी करके सुख चाहिए। आत्मा की प्यास सुख की है, उसको अतिंद्रिय सुख अगर नहीं दिया जाए तो इंद्रिय सुखों के पीछे ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किधर जाएगा, खाने पीने में जाएगा, घूमने फिरने में जाएगा, पर इससे भी वो संतुष्ट नहीं होगी। और मौका अगर मिल जाए, अवसर अगर आ जाए तो वो भोग विलास से भोग लेगा। फिर उसके बाद आत्मग्लानी, अपराध बहुत, गिल्टी, और इस कुछ चक्र में फंस जाएगा। फिर योग करने का, फिर वह वापस प्रयत्न करेगा, फिर बाबा को सब कुछ सुनाएगा, परंतु उस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा कुछ चक्र है, भयंकर चक्र है कि जिसमें समझ में नहीं आता। बाबा जो मुरली में कहते हैं ना, ट्रेटर बन जानते, आवंती कथंती सुनंती भागंती माया का बनंती बाप को फाटकती देवंती, बाबा की भाषा में। यहाँ आए, सुना बहुत अच्छा, यहाँ से गए खलास, ये सब अवस्था करे क्यों हो जाती है। काम बहुत शक्तिशाली, इसके लिए बाबा कहते हैं माया भी बहुत शक्तिशाली है, बाप के बच्चों को भी अपना बना लेता है ये माया। अर्थात जब भी मुरली में माया शब्द आया तो समझ लेना वहां माया शब्दों को हटाओ और विकार रखो वहां पर, और फिर देखो उस वाक्य को जो बाबा के वाक्य आते हैं ना, उसको हटाओ और वहां विकार रखो। विकार को भी हटाओ, काम को रखो। जिसने काम को जीता उसने क्रोध लोभ और मोह स्वतः ही गिर जाते, उनका अस्तित्व नहीं रहता है फिर वहां पर। तो सबसे यहां जो प्रयोग करना है वो किस पर करना है, कामों पर। किस पर करना है, हमारी जो दृष्टि है वो आत्मिक हो जाए। सभी आत्मा है, ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है, कहने के लिए कुछ, परंतु ये इतना हमारे अंदर बैठा हुआ है। आपको अगर कहा कि 10 साल पहले किसी एक भाई ने आपको, किसी एक व्यक्ति ने आपको कुछ दिया, अगर मैं पूछूं कि ये आपको किसने दिया, वो किस सेंटर की बहन, किस सेंटर का था, आपको याद नहीं, उसका नाम याद नहीं, उसने क्या पहना था याद नहीं, पर मैं कहूं कि ये स्त्री थी या पुरुष था, बहन था या भाई थी, आपको वो याद है कि वो बहन थी, क्यों, वो याद रहा है, परंतु उसने क्या पहना था, कहां से थी, क्या नाम था, वो कुछ याद नहीं है। परंतु ये कभी भूलता है कि जो व्यक्ति मुझे मिला वो स्त्री है या पुरुष, ये कभी नहीं भूलता है। इतना गहरा बैठा हुआ है वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व, इस भान से बाहर निकलना यही तो तपस्या है। स्त्री के भान से बाहर निकलना, पुरुष के भान से बाहर निकलना, और हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाए, ये हमारा प्रयोग है। तो प्रयोग किस पर करना है, विकारों पर प्रयोग करना है, संस्कारों पर प्रयोग करना है, और चौथा तीसरा प्रकृति अर्थात परिस्थिति पर प्रयोग करना है। तो ऐसे प्रयोगी आत्मा बनना है। अच्छा।